अध्याय 10। राधा पार्थिव प्रतिमा पराशक्ति के रूप में। मध्यकालीन साहित्य को यदि किसी एक शब्द में अभिव्यक्त करना हो तो निसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि वह शब्द है राधा। राधा मध्यकालीन साहित्य की प्रेरणा शक्ति है, अधिष्ठात्री है और साथ ही वह नारी की एक ऐसी मानसर मूर्ति है जिसके शरीर के हर अणु में कच्ची मिट्टी की गंध और आत्मा के प्रत्येक चेतन परमाणु में दिव्य प्रेम की अलौकिक छटा। 6वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारतीय वांग्मय इस अनुपम नारी रत्न की छाया गतिकर सौंदर्य सृष्टि से अनुप्राणित हुआ है। राधा शब्द का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ, यह प्रश्न प्रायः साहित्य के जिज्ञासु अनुसंधायकों के चित्त को द्वेरित करता रहा है। राधा किसी नारी का नाम नहीं है, यह नारी जीवन की संपूर्ण गरिमा, तेजोदीप्तता, समर्पण, प्रेम की अनन्यता तथा संपूर्ण सौंदर्य, शील और प्रहार के घन विग्रह का अभिधान है। राधा भारतीय प्रेम साधना के परिणति का नाम है। इन साधना का आरंभ वैदिक साहित्य में दिखाई पड़ने लगता है, जब ऋषि ने प्रकृति को आद्याशक्ति के रूप में अपनी प्रथम श्रद्धांजलि अर्पित की। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में शक्ति के पृथ्वी रूप की जो वंदना है वह विश्वजननी पृथ्वी के प्रति मनुष्य की प्रणति का प्रथम मुख्यवास नहीं तो क्या है। डॉक्टर शशिभूषण गुप्त ने श्री राधा का क्रम विकास स्पष्ट करते हुए बताया है कि इनोटेड कामा वेद में वर्णित पृथ्वी की इस देवी मूर्ति के साथ परवर्ती काल के विष्णु की भूशक्ति की योजना स्मरण की जाती है। श्रुतियों में हमें शक्ति का लक्षणीय उल्लेख मिलता है। केनोपनिषद में जहाँ ब्रह्म शक्ति ही असल शक्ति है, वह शक्ति जो अग्नि, वायु, इंद्र आदि सभी देवताओं के अंदर क्रियमाण है। देवताओं को यही तत्व दिखलाने के लिए साक्षात ब्रह्म विद्या बहुशोभनमाना हैमवती उमा के रूप में आकाश में आविर्भूत हुई। यूनाइटेड कॉमन उपनिषदों में शक्ति के रूप और सौंदर्य को स्पष्ट करने वाले बहुत से प्रसंग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें शक्ति अजालोहित शुक्ल पृष्ठमण आत्मानुरूपा बहुप्रजा आदि रूपों में अभिनंदित की गई है। आद्याशक्ति या देवी का सबसे पूर्ण या महिमा मंडित रूप मार्कंडेय पुराण में दिखाई पड़ता है। इस चित्रण में सौंदर्य, शील और शक्ति तीनों का ही चरम उत्कर्ष एकत्र सन्निहित होकर उपस्थित हुआ है। देवी यहाँ न केवल शुभ्र प्रज्ञा रूप और दिव्य है, बल्कि वह मंगल, सौंदर्य, राजस गुणों से युक्त है। हाव भाव तथा अन्य नारी सुलभ प्रक्षोभक अलंकारों से सज्जित भी है। देवी सौंदर्य के चित्रण में काम शास्त्रीय लक्षण देखे जा सकते हैं। वह पराशक्ति के रूप में सहस्त्रों उदीयमान सूर्यों की क्रांति को धारण करने वाली लाल रेशमी वस्त्र में आवृत, लाल चंदन से लिप्त पयोधरों वाली कमल के समान नेत्रों की क्रांति को धारण करने वाली है। साथ ही मातंगी के रूप में वही देवी श्यामल अंगों पर रक्तवर्ण और अरुण कंचुकी धारण करने वाले मुकुलित कमल की माला पहने हुए रत्न पीठ पर बैठी हुई पिंजरबद्ध शुक के मीठे शब्दों को सुनती हुई वीणा वादन करती हुई हाथ के शंख पात्र में आसव लिए हुए सजल नेत्रों वाली भी दिखाई पड़ती है। शक्ति के उपर्युक्त दोनों रूपों को देखने से भलीभांति प्रकट हो जाता है कि अत्यंत प्राचीन काल से श्री शोभावर्धन के प्रसंग में देवी रूप दोनों पक्षों का समवेत चित्रण होता रहा है। मांसल सौंदर्य और अलस नेत्रों की कांति का वर्णन ही नहीं, देवी को शंख पात्र और शुक कलपठित ऋणवंती भी कहा गया है। ये अभिप्राय प्यारा अलंकरण की रूढ़ियाँ मध्यकालीन काव्य में नायिका के वर्णन में बहुत बार प्रयुक्त हुई है। डॉक्टर दास गुप्त का यह निष्कर्ष उचित है कि यूनाइटेड कॉमा तंत्र पुराणादि का शैव दर्शन में जहाँ शक्ति तत्व का विवेचन भलीभांति प्रारंभ हुआ है, वहाँ देखते हैं कि शक्तिवाद ने वैष्णव धर्म और दर्शन में भी घुसना शुरू किया है। और हमारा विश्वास है कि वैष्णव धर्म और दर्शन में घुसा हुआ वह शक्तिवाद ही परवर्ती काल में पूर्ण विकसित राधावाद में परिणत हुआ। श्रीमद्भागवत कृष्णचरित का कोश ग्रंथ है और साथ ही परवर्ती कृष्ण लीला संबंधी कविताओं का उपजीव्य स्रोत। किंतु राधा कृष्ण प्रिया के रूप में इस ग्रंथ में भी दिखाई नहीं पड़ती। गोपियों का वर्णन है, रास के अत्यंत मादक रूप का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण हुआ है, किंतु कृष्ण के अनन्य प्रिया के रूप में यहाँ कहीं भी राधा दिखाई नहीं पड़ती। भागवत में रास क्रीड़ा के प्रसंग में एक स्थान पर यह वर्णन अवश्य आता है कि कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपी को लेकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर उनके वियोग में व्याकुलता गोपियों ने इस सौभाग्यवती गोपी को लक्ष्य करके किंचित ईर्ष्यावश कहा था, अर्थात इसी ने भगवान हरि का सही आराधना की है, क्योंकि हमें छोड़कर गोविंद इसी के प्रेम में पगे हुए हैं। अनयाराधित शब्द को लेकर विद्वानों ने राधा नाम के संधान का प्रयास किया है और बताया कि आराधना में ही राधा नाम का आविर्भाव हुआ। परवर्ती पुराणों में राधा का नाम अवश्य आता है। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में राधा के विषय में उल्लेख प्राप्त होते हैं। गौड़ीय वैष्णव आचार्य रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में राधा प्रकरण के अंतर्गत यह बताया है कि गोपालोत्तर तापनी में राधा गांधर्वी नाम से प्रसिद्ध हैं तथा ऋक परिशिष्ट में राधा माधव के साथ उदित हैं। राधा विषयक अन्य प्राचीन उल्लेखों का संधान करते हुए डॉक्टर शशिभूषण दास गुप्त ने दक्षिण के वैष्णव भक्त आलवारों के भजनों में आने वाली नायिका नापिन नाई का भी विचार किया है। नापिन नाई एक फूल का नाम है। नापिन नाई राधा के प्रियतमा और लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। नापिन नाई राधा की तरह ही गजगामिनी है, गौरी है, सौंदर्य की प्रतिमा है। नापिन नाई ही गोपियों में प्रधान और कृष्ण की प्रियतमा है। इस पौराणिक कल्पना की इन्होंने स्थानीय उपाख्यानों में मिलाकर थोड़ा बहुत बदल दिया। आलवार भक्तों के तिथिकाल के विषय में काफ़ी विवाद है, फिर भी इतना तो माना ही जाता है कि इनका आविर्भाव 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। इस दृष्टि से नापिन नाई के रूप में कृष्ण की एक प्रियतमा गोपी का विवरण और वह भी राधा से मिलता जुलता काफ़ी महत्व का है, इसमें संदेह नहीं है। गाथा सप्तशती मध्यकाल की स्वच्छंद प्रेम विषय कविताओं का रत्नकोश है। कहते हैं एक बार सरस्वती की कृपा से राजा हाल के सभी नागरिक एक दिन के लिए कवि हो गए और इन अनगिनत लोगों के कंठों के अजस्र धार की तरह कविता फूट पड़ी। इसमें से सर्वोत्तम चुनकर राजा हाल ने गाथा सप्तशती का निर्माण किया। कादम्बरीकार बाणभट्ट ने इस जनश्रुति की ओर संकेत किया है। गाथा सप्तशती में बहुत से ऐसे पद हैं जिनमें श्रृंगार रति तथा प्रकृति के मनोरम चित्र भरे पड़े हैं। मैंने पीछे जा इस प्रकार के कुछ पद्यों के तुलनात्मक प्रसंग और उसका सूर और विद्यापति के पदों पर प्रभाव दिखाया है। इनमें से कुछ पद्य और राधा का प्रेम विषय भी प्रतीत होते हैं। एक गाथा में तो राधा शब्द का स्पष्ट प्रयोग ही हुआ है। कोई गोपबाल कहता है कि हे कृष्ण, तुम अपने मुख मारुत से राधा के मुख पर लगे हुए गोरज का अपनयन करके इन वल्लभियों के तथा अन्यों के गौरव का अपहरण कर रहे हो। मुह मारे तण कण गोर वाहियाय अनणेन्तो इताण वलवीण अणाम बेगोर हरस। यहाँ गोरव में यमक के आधार पर अच्छा चमत्कार भी प्रस्तुत हो जाता है। गोरंग का अर्थ एक गोरज और दूसरा गौरव है। प्राकृत अभ्रंश काव्य में आने वाले राधा संबंधी अन्य प्रसंगों पर पीछे विचार किया जा चुका है। पुष्पदंत के उत्तर पुराण का रास प्रसंग, प्राकृत पैंगलम की नौका लीला का दोहा, हेम प्राकृत व्याकरण की राधा संबंधी दोहों पर हम पीछे लुक चुके हैं। राधा के विषय में भट्ट नारायण की वेणी संहार, त्रिविक्रम भट्ट के नलचंप माघकृत शिशुपाल वध, सोमदेव के यशस्तिलक चंपू तथा कतिपय अन्य काव्य ग्रंथों में प्रसंगानुकूल चर्चाएं दिखाई पड़ती हैं। राधा कृष्ण प्रेम का सर्वाधिक मृदुल और मादक वर्णन जयदेव ने अपने गीत गोविंद में प्रस्तुत किया। जयदेव के गीत गोविंद में पहली बार एक सामान्य मानवी अपने संपूर्ण मानसल पार्थिव शरीर सौंदर्य संभार के साथ भगवान की प्रियतमा के रूप में देवी शक्ति का आधार स्थल बन गई। जयदेव ने हरि स्मरण और काम कला कुतूहल को एकत्र समन्वित कर दिया। ऐसा नहीं कि जयदेव के पहले इस प्रकार का प्रयत्न नहीं हुआ था। भक्ति काव्य के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के पुनर्परीक्षण के सिलसिले में मैंने बार बार निवेदन किया कि भक्ति कवियों के काव्य की जो परंपरा मिली उसमें भक्ति और रीति का ऐसा पार्थक्य नहीं था। प्राकृत और अपभ्रंश के आमुष्मिकता परक प्रेम काव्य जन जन चित्त को पूर्णतः अभिभूत किए हुए थे। भक्त कवियों के लिए भी माध्यम थे, उन्होंने उसी प्रेम काव्य के माध्यम को अपनाया। जड़ोन्मुख प्रेम को चिदोन्मुख बनाने के संकल्प के साथ ही उनका यह कर्तव्य था कि ये मांसल सांसारिक प्रेम को एक दिव्यता प्रदान करें। जयदेव ने यह कार्य संपन्न किया। जैसे उनके काव्य में भौतिक प्रेम का स्वर ही ज्यादा मुखर दिखाई पड़ता है, जयदेव की राधा सांसारिक मानवी की तरह ही प्रेम विवला माननी प्रेमिका के लिए और रति सुख की विदग्धा तथा अपने प्रियतम के गले में कंठहार की तरह निरंतर आलिंगन में सुख मानने वाली बालिका है। कंदर्प जोर से पीड़ित क्षणिक विरह में भी जल विहीन मीन की तरह तड़फड़ाने वाली राधिका सखी के मुख से कृष्ण और अन्य गोपियों की रति क्रणाओं का वर्णन सुनकर ईर्ष्या से कातर हो उठती है। सखी इस संताप में और वृद्धि करती हुई जब प्रकृति के उस रूप की चर्चा करती है जो अपने वासंती उद्दाम सौंदर्य से युवतियों के हृदय को पीड़ा से मथ देता है तो एक क्षण के लिए राधा का चित्त चंचल हो उठता है। वह लाल किंशुक फूलों को युवक युवतियों के हृदय को विदीर्ण करने वाले कामदेव के रक्त लिप्त नख की तरह दिखाई पड़ते हैं तथा नागकेसर के श्वेत पटल को जो मदन महीपति कनक दंड की छवि धारण किए हुए हैं देखती रह जाती है। वह अभिसार पर वह पराभव के दुख को संभाल नहीं पाती और उल्टे पर वापस लौट जाती है, किंतु कृष्ण की भुवन मोहिनी छवि को वह कैसे भुला दे। वह अहेतु प्रेम कातर मन से कृष्ण के चंद्राकार मयूर पक्ष चंचल नेत्र कपोलों पर आंदोलित कर्णावतंस तथा इंद्रधनु अनुरंधित सांद्र मेघ के सदृश उस रूप को कैसे अलग कर दे। वह बार बार अपने हृदय को समझाती है, क्या हुआ यदि कृष्ण बहुवल्लभ है, क्या हुआ यदि वे हमारे प्रेम की चिंता नहीं करते। यही राधिका के हृदय की दुर्बलता है, इस दुर्बलता के कारण ही उसका प्रेम इतना वेगवान हो सका है। इसी कातरता की आँच में तप कर वह सोना निखर पड़ा। राधा के इस विरह दुख का हाल गोपी कृष्ण को सुनाती है। वह साफ कहती है कि माधव आपकी प्राप्ति दुर्लभ है। फिर वह आपके कल्पना करके विलाप करती है, हंसती है, विचार करती है, जैसे आप उसकी आंखों के सामने खड़े हो। वह आपके ध्यान में लय हो चुकी है। वह तो आपके चरणों में पड़ी हुई सोचती है कि आपके बिना सुधा वर्षी चंद्र भी उसके शरीर में दाह उत्पन्न करता है। ध्यान लयीन पुरह परिकल्प्य भवंतमतीव दुरापम विलपति हसति विषीदति रोदिति चंचति बीचति तापम प्रतिपदि पिदमपि निगदति माधव तव चरणे पतिताहम तयि विमोके मति सपदि सुधानि परि तनुते तनुद्राहम। जयदेव कवि ने राधा की ऐश्वर्य व्यथा का अत्यंत व्यापक चित्रण किया है। इस चित्रण में प्रायः प्रकृति के सभी सौंदर्योत्पादक तथा मनोरम दृश्य उद्दीपन की तरह प्रस्तुत किए गए हैं। राधा एक सामान्य मानवी की तरह अपनी संभोगेच्छा के वेग को रोक नहीं पाती और पूर्व मिलन के क्षणों को सोच सोच कर आंसू गिराती रहती है। उसकी असहज मानव धर्मिता ही उसके चित्त की पीड़ा को गाढ़ रूप में प्रकट कर रही है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इनोटेड कामा जयदेव की विलासिनी राधा और कितव कृष्ण की विलास कला वस्तुतः आधी भी नहीं रहेगा यदि राधिका को एकांत प्रेम निर्जर भक्त के रूप में न देखा जाए। भगवान की प्राप्ति के लिए जयदेव की राधा इतने व्याकुल है कि वह सभी कारण को सांसारिक रमणियों की विरक्ति के साधन है उन्हें प्रेम के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। क्षण भर के विलंब में भी जो चित्र उत्कंठित के बोझ से फट पड़ता है उसके सुदूर प्रवास के वियोग की व्यवस्था कल्पना से भी परे है। इसीलिए कहते हैं कि इस मृणाल तंतु को जयदेव ने प्रखर ग्रीष्म के ताप में रखकर अच्छा ही किया, अच्छा ही किया। एनोटेड कॉमा राधा की यह मूर्ति जो वेद काल के पृथ्वी रूप में स्फटित होकर नाना पुराणों के देवी रूप, लक्ष्मी, श्री रूप तथा तंत्रों में वर्णित देवी रूपों से पुष्ट होती हुई मध्यकालीन प्रेम प्रधान काव्यों में प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त करके जयदेव के काव्य की राधा के रूप में उपस्थित हुई। विद्यापति को इसी प्रकार प्राप्त हुई जैसे किसी परिवार के व्यक्ति को पूर्वजों की संपत्ति, अपनी संपूर्ण गरिमा, अंधविश्वास, गंदगी, शुभ्रता के समवेत गुण दोषों के साथ प्राप्त होती है। विद्यापति ने राधा के इस प्रतिमा को अपने तरह से देखा, सोचा, समझा और उन्होंने अपनी संपूर्ण साधना और शक्ति के संयोग से इसे अभिनव रूप प्रदान किया।